घोषित जनताया प्रजा का च भी पाल रक्षक प्रजा नागरिक निरने बिना अन्न के क्षति पृष्ठ पृथ्वी पर सतह पर पास आकर छूता भूख से छाम दुर्बल देहा उनके शरीर पतेम रक्षक से अभ्यवोचन कहा। अनुवाद एवं तत्व श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, जब ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने राजा पृथु को गद्दी पर बिठा दिया तथा उन्हें नागरिकों का रक्षक घोषित कर दिया तो अन्न का अभाव हो गया। नागरिक भूख के मारे सूख कर कांटा हो गए। अतः वे राजा के समक्ष आए और अपनी वास्तविक स्थिति कह सुनाई। तात्पर्य, यहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा राजा के चुनाव के संबंध में सूचना दी गई है। वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार ब्राह्मणों को समाज का प्रधान माना जाता है और उन्हें सर्वोच्च सामाजिक स्थान प्राप्त है। वर्णाश्रम धर्म अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया है, जिसमें चार वर्ण तथा चार आश्रम हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वर्णाश्रम धर्म मानवकृत नहीं है, वरन यह ईश्वर कृत संस्था है। इस कथानक में यह स्पष्ट सूचित होता है कि ब्राह्मण ही राज सत्ता को नियंत्रित करते थे। जब बेन जैसा दुष्ट राजा राज्य करता तो ब्राह्मण उसे अपनी शक्ति से मार डालते और योग्यता की परीक्षा करके दूसरा राजा चुनते थे। दूसरे शब्दों में ब्राह्मण बुद्धिमान व्यक्ति या ऋषि राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखते थे। यहाँ पर हमें संकेत मिलता है कि ब्राह्मणों ने किस प्रकार राजा पृथु को प्रजा के रक्षक के रूप में सिंहासन पर बिठाया। प्रजा भूख के मारे दुर्बल हो जाने के कारण राजा के पास आई और सूचित किया कि उचित कार्यवाही की जाए। वर्णाश्रम धर्म की संरचना उतनी उत्तम थी कि ब्राह्मण राज्य के अध्यक्ष का पद प्रदर्शन करते थे। जब राज्याध्यक्ष प्रजा की रक्षा करता था, क्षत्रिय जनता की रक्षा का भार संभालते थे और क्षत्रियों के संरक्षण में वैश्य गायों की रक्षा करते, अन्न उत्पन्न करते और उसका वितरण करते थे। शूद्र अर्थात काम काज करने वाले श्रेणी तीनों उच्च जातियों की सहायता शारीरिक श्रम द्वारा करती थी। यह अत्यंत सुचारू सामाजिक पद्धति है।
ओम ज्ञान चेमेनांदस्य ज्ञानंजन शलक्य चक्षुरन्वितरण्येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजतं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवम् सद्वैतं सवधूतं परिजना साहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णा पदान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं स हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिवे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्ण ये Vidabhishikta Pitur Angabe Prayer Amantrita Janataya Chapalaha Sajan Nirane Kashidi Prista Etya Shuchama Deha Patim Abhyavocham. So Maitreya Muni is sloka ucharan kare hain aur aapne pichle adhyayon mein padha ki pehle Maharaj Vena ka rajya tha prithvi par aur Maharaj Vena jo the atyant dushvichar ke the itna tak ki unhone apne sapaiyon ko bhej kar sare brahmanon ke gharon ko jala diya. Kyun? Kyunki wo kehte the main hu bhagwan, meri puja karne ke bajaye tum vishnu ki puja karte ho. So Maharaj Vena ne gayon ko bhi marwa diya. Kyun? Kyunki gaay se doodh nikalta hai, doodh se makhan banta hai, makhan se yagya mein upyog kiya jata hai. So brahmanon ne dekha ki Maharaj Vena ke nastik vicharon ke karan prakriti saath nahi de rahi. Maya dakshina prakriti suite sa characharam. Ye jo prakriti hai ye bhagwan ke ishare se chalti hai. Aur phir brahmanon ne Maharaj Vena ko shrap diya aur unke putra Prithu Maharaj ko rajgadi prapt hui. Prithu Maharaj Bhagwan ke shaktavesh avatar hain. Bhagwan ke avataron ke alag alag vibhag hain. Yoga avatar, shaktavesh avatar, guna avatar, manvata avatar aur yoga avatar, neela avatar. To Bhagwan Prithu avatar hain. To bhagraja hote hue halanki wo Bhagwan ke avatar the, unhone Sanat Kumar ke dwara divya shiksha prapt ki aur Maharaj Prithu ka swagat sab brahmano ne kiya jo ki aapne pichle adhyay mein suna hai. To aaj ke shlok mein kaha ja raha hai jab Prithu Maharaj ko rajgadi par bithaya, kisne bithaya? Brahmano ne aur santo ne. Brahmano ne aur santo ne ये निर्णय किया कि पृथ्वी महाराज को राजगद्दि देनी चाहिए. जैसे अभी भारत में परतंत्र इलेक्शन हुआ था, तो इलेक्शन कौन देता है? जिनके पास कोई ज्ञान नहीं नेता के क्या गुण होने चाहिए, है ना? पर हमारे वैदिक साहित्य के अनुसार ब्राह्मण का होना, संत का होना समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसलिए इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णाश्रम धर्म कच की चर्चा करते हैं. छतुर्वर्ण माया सिस्टम गुणा कर्म विभाग असहा. भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि गुणों के अनुसार ये निर्णय किया जाता है कौन है ब्राह्मण, कौन है क्षत्रिय, कौन है वैश्य, कौन है शूद्र. और समाज में ब्राह्मणों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हम समाज में सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं. वैदिक शास्त्र में ब्राह्मणों की तुलना की जाती है किसके साथ? शेर के साथ. क्षत्रियों की तुलना की जाती है किसके साथ? बायों के साथ. वैश्यों की तुलना की जाती है पेट के साथ, और शूद्रों की तुलना की जाती है ब्राह्मणों के साथ. अब ब्राह्मणों ने और संतों ने पृथ्वी महाराज को राजगद्दि दी. क्यों? क्योंकि पृथ्वी महाराज भगवान के अवतार थे और आदर्शनीय राजा थे. और यहां कहा जा रहा है जब पृथ्वी महाराज राजगद्दि पर बैठे उस समय समाज में स्टारवेशन भूख थी, अन्न नहीं था. आप कहोगे क्यों उस समय अन्न क्यों नहीं था, भूख क्यों थी? क्योंकि राजा नास्तिक था. वीणा, क्योंकि राजा नास्तिक था, इसे प्रकृति जो है वो स्ट्राइक पर चले गई। जैसे आपको थमका नहीं दे तो लोग लाल झंडा उठाते हैं, तो माया दक्षिण प्रकृति स्वीते सराचराचरम। तो ये प्रकृति मेरे इशारे से चल रही है, क्योंकि महाराज वीणा ने हर प्रकार का यज्ञ रुकवा दिया था, ब्राह्मणों के घरों को जला दिया था, जिसका ये परिणाम हुआ कि प्रकृति के द्वारा कुछ नहीं प्राप्त हो रहा था। सागर सारे सूख गए, खेती से अन्न उत्पन्न नहीं हो रहा था, पेड़ों में फल नहीं थे, जिसका ये परिणाम हुआ क्या, पूरी प्रजा जो है भूखी थी, प्यासी थी। आज के वातावरण में आप देखते हो कि समाज की जो आवश्यकताएं हैं, द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, दिन ब दिन कम होते जा रही हैं। जैसे भारत में भी, अब दक्षिण भारत में जाओ, कई सागर सूख गए हैं, आपने देखा है, सागर सूख गए हैं। गंगा का भी जो वाटर लेवल है, दिन ब दिन कम होते जा रहा है ये। और कभी कभी बारिश आती है तो बाढ़ के रूप में आ जाती है, कभी कभी सूखा हो जाता है। प्रकृति द्वारा अनेक प्रकार के कष्ट, जैसे आजकल बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है बॉम्बे में, पता नहीं क्या टेम्परेचर, पर बाकी दक्षिण भारत उत्तर भारत में बहुत इतनी इतनी ज्यादा गर्मी पिछले 40 साल में नहीं हुई है। तो क्या कारण है, क्योंकि आज हम यज्ञ नहीं कर रहे, और क्योंकि हम यज्ञ नहीं कर रहे प्रकृति साथ नहीं दे रही। भगवान गीता में कहते हैं अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण, वर्षा की प्राप्ति होती है जब आप धर्म का पालन करते हो। धर्म का पालन का अर्थ क्या है, यज्ञ। तो आप यज्ञ नहीं करोगे तो प्रकृति साथ नहीं देगी। आज के वातावरण में आप देख रहे हो समाज में तनाव स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, जो हमारी आवश्यकता है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ वो कठिनाई से प्राप्त हो रही है। जल की प्राप्ति भी दिन ब दिन कठिन होते जा रहा है। इसका कारण क्या है, क्योंकि हम यज्ञ नहीं कर रहे। क्योंकि हम यज्ञ नहीं कर रहे समाज में, इसलिए समाज की जो आवश्यकताएं प्राप्त नहीं हो रही। तो पृथ्वी महाराज ने आगे के श्लोकों में आप पढ़ोगे, अपनी प्रजा को आदेश दिया कि तुम भगवान के नामों का गुणगान करो। और जब उन्होंने भगवान के नामों का गुणगान किया तो फिर देखा कि इसका ये परिणाम हुआ कि आवश्यकताएं जो है प्राप्त होने लगे। तो दूसरे शब्दों में, अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे, धर्मेन हीना पशु भी समाना, धर्म के बिना ये जीवन जो है पशु के जीवन के समान है। आज अगर समाज में आवश्यकता की कठिनाई अनुभव कर रहे हो, इसका मूल कारण ये है, मेन रीजन इज, हम भगवान के शिक्षा से दूर जा रहे हैं। तो यह इस श्लोक में कहा जा रहा है कि जब पृथु महाराज राजगद्दी पर बैठे, उस समय आवश्यकताओं अन्न वगैरह की क्या थी, कमी थी, और जो नागरिक थे पतले हो गए थे, स्टार्वेशन उनको, क्योंकि अन्न नहीं मिल रहा था, खाने के लिए कुछ था नहीं, तो बिल्कुल पतले सूखे हो बन गए थे। और फिर राजा ने क्या किया, राजा ने प्रजा को कहा, किंग इंस्ट्रक्टेड द सिटीजन, तुम सबका कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा में जुड़ने के लिए, जिवेरे स्वरूपाय कृष्ण नित्य दास। तो ये है राजा का कर्तव्य कि वो प्रजा को मार्गदर्शन दे, प्रजा को अपना आध्यात्मिक कर्तव्य जो है वो शिक्षा भी दे। राजा या सरकार का ये कर्तव्य नहीं खाली लोगों को टैक्स देते जाओ और टैक्स लो और टैक्स का 80% खर्चो नेताओं की सुरक्षा के लिए। प्राचीन समय में सरकार द्वारा टैक्स होता था, पर टैक्स का एक पैसा भी जो मंत्री होते थे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं करते थे, उपयोग करते थे किस लिए? समाज के सुधार के लिए। तो राजा जो है उनको प्रेरणा लेनी चाहिए पृथ्वी महाराज के उदाहरण से, उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए भगवान राम के उदाहरण से। जैसे कि आज भी लोग राम राज्य का स्मरण करते हैं। राम राज्य का स्मरण क्यों करते हैं? भगवान राम के शासन के समय समाज में किसी प्रकार का क्लेश नहीं था, समाज में कोई बुढ़ापापन रोग पीड़ा का लक्षण नहीं था, और मृत्यु के समय भी प्रजा खुद चुन सकती थी। अगर आज आपको ये छूट दी जाए कि आप मृत्यु के समय चुन सकते हो, तो सारे शमशान घाट बंद हो जाए, है ना, कोई चुनेगा ही नहीं। पर भगवान राम राज्य के समय कोई बुढ़ापापन नहीं और कोई रोग पीड़ा नहीं, और भगवान राम पूरी प्रजा को अपनी उलाज जैसे पाल रहे थे। जैसे एक पिता अपनी उलाद को पालता है, उस प्रकार का स्वभाव नेता में होना चाहिए, और नेता को प्रजा को अपनी उलाद मानते हुए देखभाल करना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी समाज के इतने शुभचिंतक थे कि वो वेश बदल कर जाते थे देखने के लिए समाज में किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं आ रहा, और पूरी प्रजा संतुष्ट थी अपने आदर्शनीय राजा को देखकर। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में समझाते हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा हमें मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। जैसे आजकल नेता होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा, उनके भी कई काउंसलर्स होते हैं, एडवाइजर्स। पर प्राचीन समय में जो क्षत्रिय राजा थे, उनके काउंसलर कौन थे? शुद्ध ब्राह्मण। और ये शुद्ध ब्राह्मण थे, उनके मन में, हृदय में केवल समाज का सुख था। जैसे भगवान रामचंद्र के शासन के समय रामचंद्र ने अपने सारे गहने ब्राह्मणों को बांट दिया। सीता देवी ने एक नथनी रोजिंग नोजिंग रखा, बाकी सारे गहने ब्राह्मणों को बांट दिया। ब्राह्मणों ने ये ग्रहण किया, फिर वापस लौटा दिया राजा को और कहा ये हमें आवश्यकता नहीं। जब भगवान राम ने पूछा कि मांगो कितनी जमीन चाहिए, ब्राह्मणों ने कहा हमें उतनी जमीन दो जितना आवश्यक है, उसे अधिक नहीं चाहिए। तो शुद्ध ब्राह्मणों की आवश्यकता है समाज में मार्गदर्शन देने के लिए, और आप शुद्ध ब्राह्मण बन सकते हो गुणों के पालन के द्वारा। जैसे कि भागवत गीता में ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन है, शमो दमो तपो सोचम शांति रजम वेवचा ज्ञानम विज्ञानम अस्तिकम ब्रह्म कर्म सुभागजम। और ब्राह्मण के गुण हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, ये नहीं पैदाइशी ब्राह्मण। जैसे हमारी संस्था में हम पैदाइशी ब्राह्मणों को स्वीकार नहीं करते, हम ब्राह्मण स्वीकार करते जो व्यक्ति गुणों पर आधारित। जैसे कि हमारे इस्कॉन संस्था में हरी नाम दीक्षा के पश्चात अगर कोई व्यक्ति शास्त्रीय ज्ञान को अनुकूल करे, अच्छी साधना रखे, वैष्णव के लक्षणों को प्रस्तुत करे, शास्त्रीय ज्ञान हो, फिर वो ब्राह्मण दीक्षा लेने के योग्य हो जाता है। तो दूसरे शब्दों में हर व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है गुणों की प्राप्ति के पश्चात। एक समय किसी ने प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी तुमको जादू कर सकते हो? क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं संत महात्मा जादू करेंगे, चमत्कार दिखाएंगे। स्वामी जी ने कहा मैं जादू तो नहीं कर सकता, पर एक जादू मैंने किया है। क्या? मैंने हजारों मिर्चों को ब्राह्मण बना दिया है। जो व्यक्ति पाप के कार्य में जुड़े थे बचपन से, उन्हें आज शुद्ध ब्राह्मण बना दिया है। तो समाज में ब्राह्मण का होना महत्वपूर्ण है। समाज में ब्राह्मण होंगे तो समाज सुखी होगा। प्रभुपाद जी कहते थे कि ब्राह्मण के बिना समाज अधूरा माना जाएगा, तो ब्राह्मण के बिना समाज अधूरा माना जाता है। तो ब्राह्मण का होना बहुत महत्वपूर्ण है समाज के सुख के लिए। और राजा का कर्तव्य बनता है समाज की सुरक्षा करे। आप भागवत में कथा पढ़ते हो महाराज सिब्बी की। महाराज सिब्बी बड़े दयालु राजा थे। एक दिन देवताओं ने निर्णय किया हमें राजा की परीक्षा लेने दो। तो एक देवता बन गए कबूतर, दूसरा देवता बना बाज, ईगल। तो जो बाज है वो कबूतर का पीछा कर रही थी और कबूतर आया महाराज सिब्बी की गोद में, कहने लगा मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, ये बाज मेरा पीछा कर रही है, मुझे खाना चाहती है। थोड़ी देर बाद बाज पहुंची। बाज ने पूछा कोई कबूतर यहां आया है? हाँ आया है, मुझे चाहिए वो खाने के लिए। राजा ने कहा वो कबूतर मेरे पास आया है सुरक्षा के लिए, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, पर अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अपने शरीर से चमड़ा काट कर तुम्हें दे सकता हूँ। जितना वजन है ये कबूतर का उतना चमड़ा मांस मेरे शरीर से काट के ले लो। राजा ने ऐसे कहा। तो भगवान की इच्छा के अनुसार वो कबूतर का वजन बढ़ते गया और राजा अपने शरीर का मांस देते गया। फिर देवताओं ने देखा ये राजा इतनी चिंता करता है प्रजा के सुख के लिए कि उन्होंने अपना असली स्वरूप प्रकट किया और फिर राजा के शरीर के साथ जो चमड़ा मांस खाता था जोड़ दिया। तो ये उदाहरण हमने दिया दिखाने के लिए क्या भाव राजाओं का होना चाहिए। राजा का कर्तव्य बनता है पूरे समाज की सुरक्षा करे, पशुओं की भी, गाय माता, हमारी सात माताएं होती हैं जिनमें एक है गाय माता। तो राजा या सरकार का कर्तव्य बनता है क्या कि पूरे समाज की सुरक्षा हो। वो है राजा जो कि पूरे समाज की सुरक्षा करे। तो यहाँ आप देख रहे हो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब महाराज वेना का राज्य था पृथ्वी पर पूरी प्रजा दुखी थी, और जब पृथ्वी महाराज का राज्य आरंभ हुआ तो प्रजा ने सुख महसूस किया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी महाराज ने आदेश दिया कि सबसे पहले कर्तव्य क्या है, उनको भगवान का गुणगान करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो मुख्य है देश का उसको पूरी प्रजा की सुरक्षा करनी चाहिए। तो जैसे कोई भी राजा हो, प्रधानमंत्री हो, सरकार हो, उनका कर्तव्य बनता है क्या कि वो पूरी प्रजा का को सुख दे। और अगर हम अपना ये कर्तव्य नहीं करेंगे तो फिर भागवतम के पांचवें स्कंध में कहा गया है आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। ये नहीं कि हमने पैसे खर्च के 10 करोड़ खर्च के हम MP बन गए, आप MP बन जाओ, मंत्री बन जाओ और अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी को नहीं निभाओ तो पता ही मृत्यु के बाद क्या होगा। सुनना चाहते हो? मृत्यु के बाद हमें नरक में जाना पड़ता है, जहाँ की जैसे गन्ने को निकालते हैं मशीन से जूस निकालने के लिए वैसे पीसा जाता है। किनको? जो व्यक्ति चापलूसी करके देश के नेता बन जाते हैं और जो अपना आध्यात्मिक कर्तव्य नहीं निभा पाते। तो शास्त्रों के अनुसार जब आप राजा बनते हो, मंत्री बनते हो, प्रधानमंत्री बनते हो, अधिकारी बनते हो, गुरु बनते हो, पिता बनते हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रजा, शिष्य और दूसरों को, पुत्रों को, औलाद को शिक्षा दो जिसके द्वारा वो भगवान के धाम लौट सके। तो ये है आज के श्लोक का मूल संदेश। तो आज वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव तिथि भी है। वृंदावन दास ठाकुर को व्यास देव जी का अवतार माना जाता है। जिस प्रकार व्यास देव ने भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया भागवत में, उसी प्रकार वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाओं का वर्णन किया। तो चैतन्य चरितमृत आदि लीला में कई बड़े प्रसिद्ध श्लोक हैं, जिनमें वृंदावन दास ठाकुर का गुणगान किया जा रहा है। मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा फिर हिंदी में अनुवाद करूंगा। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु द इंडिपेंडेंट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज ग्रेटली मैग्नानिमस, अनलेस वन वर्शिप्स हिम वन कैन नेवर बी लिबरेटेड। यहाँ कहा जा रहा है चैतन्य महाप्रभु जो है अत्यंत दया दयालु है, जब तक कोई उनकी पूजा नहीं करे उसे मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। मुक्ति चाहिए तो क्या करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु के शरणागत होना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसार है। ओ सोल्स जस्ट रीड श्री चैतन्य मंगल, बाय रीडिंग दिस बुक यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द ग्लोरीज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य भागवत जो है पहले प्रकाशित हुई थी चैतन्य मंगल के नाम पर, फिर वृंदावन दास ठाकुर को पता लगा कि चैतन्य मंगल नाम का ग्रंथ लोचन दास ठाकुर ने प्रकाशित कर दिया है, तो फिर उन्होंने चैतन्य मंगल का नाम को बदल दिया और चैतन्य भागवत के रूप में उसे प्रकाशित किया। तो चैतन्य भागवत में भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन है। प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितमृत का पहले अनुवाद किया चैतन्य भागवत का नहीं, क्यों? चैतन्य भागवत में भगवान की अनेक लीलाएं हैं और चैतन्य चरितमृत में लीला भी है पर सिद्धांत ज्यादा है, और प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य सिद्धांत को पहले समझें। तो चैतन्य भागवत में भगवान के अनेक लीलाओं का गुणगान है, और कृष्णदास कविराज जी ने चैतन्य चरितमृत में उन लीलाओं का ही वर्णन किया है जिनका गहराई में चैतन्य भागवत में वर्णन नहीं है। हमारे जो महान आचार्य हैं वो कभी अपनी होशियारी दिखाने की कोशिश नहीं करते। हमारे आचार्यों के विषय में बहुत कम ज्ञान है उनके जीवन के विषय में, क्यों? क्योंकि हमारे जो आचार्य थे वो छुपाते थे अपना बैकग्राउंड, वो चाहते नहीं थे कोई उनका गुणगान करे, वो चाहते नहीं थे कि उनकी बड़ा प्रशंसा की जाए, तो इसलिए वो उन्होंने अपने विषय में इतना गहरा ज्ञान नहीं दिया। चैतन्य वृंदावन दास ठाकुर के विषय में भी ज्ञान है वो इतना गहरा नहीं, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर भी चाहते नहीं थे कि उनका गुणगान किया जाए। तो चैतन्य चरितमृत में उन लीलाओं का वर्णन है जिनका गहराई में वर्णन नहीं है चैतन्य भागवत में। तो चैतन्य यहाँ कहा जा रहा है ये ग्रंथ पढ़ो, ये ग्रंथ पढ़ने से चैतन्य महाप्रभु जी की जो अनेक लीलाएं हैं उनके विषय में आप ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। एज व्यासदेव इज कंपाइल ऑल द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण इन श्रीमद् भागवतम, ठाकुर वृंदावन दास इज डिपिक्टेड द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। सो व्यास वृंदावन दास ठाकुर कौन है? व्यास देव के अवतार हैं। तो जिस प्रकार व्यास देव ने श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया है, उसी प्रकार वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में किसका वर्णन किया है? किसका? चैतन्य महाप्रभु जी का वर्णन किया है। दूसरे शब्दों में व्यासदेव जी जो भगवान के अवतार है और वृंदावन दास ठाकुर में कोई अंतर नहीं। ठाकुर वृंदावन दास इज कंपोज श्री चैतन्य मंगल, हियरिंग दिस बुक एनाइलेट्स ऑल मिसफॉर्च्यून। तो वृंदावन दास ठाकुर कृष्णदास कविराज कहते हैं चैतन्य मंगल सुनोगे तो सब मिसफॉर्च्यून समाप्त हो जाएगा, दूसरे शब्दों में चैतन्य भागवत सुनोगे तो आपको भाग्य, आपका सौभाग्य बनेगा और आप असली संतुष्टि प्राप्त कर सकोगे। क्योंकि चैतन्य भागवत में क्या है, चैतन्य महाप्रभु जी की अनेक लीला है। तो वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं चैतन्य भागवत को सुनो, सुनोगे तो क्या बन जाओगे, भाग्यशाली। प्रजल्पा सुनोगे तो भक्ति नष्ट हो जाएगी, कृष्ण कथा चैतन्य कथा सुनोगे तो भक्ति मजबूत हो जाएगी। तो अगर आपके हाथ में कोई धन आ जाए, कोई परस पत्र आ जाए तो आप क्या मानते हो, आप बड़े सौभाग्यशाली हो, है कि नहीं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप कृपया करके चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा प्राप्त करो, जो संभव है चैतन्य मंगल सुनकर। By reading Chaitanya Mangal, one can understand all the glories and truth of Lord Chaitanya and Lord Nityananda and come to the ultimate conclusion of devotional service to Lord Krishna. So, आगे कहते हैं वृंदावन कृष्णा कवराज कि अगर आप चैतन्य मंगल पढ़ोगे तो फिर आप चैतन्य महाप्रभु और भगवान नित्यानंद के स्वरूप को समझ सकोगे। चैतन्य महाप्रभु कौन है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है, राधा और कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में, किस कारण, पतितों का उद्धार करने के लिए। और उनके साथ प्रकट हुए कौन, भगवान नित्यानंद, नित्यानंद। नित्यानंद का अर्थ है जो उनकी शरण ले वो सदा आनंद ही आनंद अनुभव करेगा। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा करो कानो करे आमी बोलो दुखी। जो व्यक्ति भगवान नित्यानंद के शरण में आता है वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहेगा। तो नित्यानंद जी बालराम जी के अवतार हैं, लक्ष्मण जी के अवतार हैं। जब भगवान नित्यानंद ये पृथ्वी पर थे छोटे पन में, भगवान लील लक्ष्मण और बालराम की लीलाएं निभाते थे और उनके माँ बाप हराई पंडित और पद्मावती, उनके पिताजी का नाम था हराई पंडित, माता का नाम था पद्मावती, वो आश्चर्य होते थे कि कैसे हमारे बेटे को इन लीलाओं का ज्ञान मिल रहा है, हमने तो सिखाया ही नहीं। पर वो स्वयं भगवान के अवतार थे इसलिए खुद ही खुद उनको ये ज्ञान जन्म से था। तो यहाँ कहा जा रहा है चैतन्य भागवत पढ़ने से आप ये भी समझ सकोगे कि शुद्ध भक्ति ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। दूसरे शब्दों में चैतन्य भागवत का निर्णय क्या है, शुद्ध भक्ति। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शंता, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशंता। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति चैतन्य भागवत पढ़ेगा उसके हृदय में शुद्ध भक्ति का भाव प्रकट होगा। इन श्री चैतन्य मंगल लेटर ऑन ओन श्री चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर has given the conclusion in essence of devotional service by quoting the authoritative statements of Srimad Bhagavatam. So, Krishnadas Kaviraj ji keh rahe hain ki Chaitanya Bhagavat mein Vrindavan Das Thakur ne pramanik Srimad Bhagavat Gita aur Bhagavatam ke shlokon ka upyog kiya hai. Aap padhte aur Chaitanya Charitamrita mein bhi anek sthanon mein Gita ke shlokon ka upyog kiya gaya hai. अनेक स्थानों में भागवतम के श्लोकों का उपयोग किया गया है। क्यों, क्योंकि चैतन्य भागवत और चैतन्य चतुर्मिता की रचना हुई थी आज से 500-600 साल पूर्व और भागवत और गीता का उच्चारण हुआ था 5000 साल पूर्व। तो यहाँ कहा जा रहा है कि चैतन्य भागवत हैज बिकम वेरी ऑथराइज्ड प्रमाणिक, क्योंकि उसमें वृंदावन दास ठाकुर ने भागवतम के अनेक श्लोकों का उपयोग किया है। आगे इफ इवन अ ग्रेट एथिस्ट हियर श्री चैतन्य मंगल ही इमीडिएटली बिकम्स अ ग्रेट डिवोटी। तो आगे कहा गया है कि अगर कोई नास्तिक व्यक्ति भी चैतन्य मंगल सुनेगा तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, भक्त बन जाएगा। चैतन्य मंगल चैतन्य भागवत में इतनी शक्ति है, नास्तिक व्यक्ति भी अगर सुनेगा तो उसके हृदय में परिवर्तन आएगा। जैसे कि प्रभुपाद जी की कृपा से सारे विश्व में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति जुड़े थे और भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो चैतन्य भागवत हमें सुनना चाहिए। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस बुक इज सो सब्लाइम दैट इट अपीयर्स दैट श्री चैतन्य महाप्रभु हैज पर्सनली स्पोकन थ्रू द राइटिंग्स ऑफ वृंदावन दास ठाकुर। तो आगे ये कहा जा रहा है कि चैतन्य चरित भागवत का जो संदेश है इतना मधुर है और ऐसे लगता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं वृंदावन दास ठाकुर के माध्यम से इन ग्रंथों की रचना कर रहे हैं। चैतन्य भागवत ऐसे लगता है कि चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकट होके क्या कर रहे हैं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं ये प्रेरणा दी जिसके द्वारा ये चैतन्य मंगल की रचना की। जैसे प्रभुपाद जी के तात्पर्य को भी पढ़ो तो ऐसे लगता है कि भगवान ने स्वयं प्रेरणा दी जिसके द्वारा प्रभुपाद जी ये सब ग्रंथों का अनुवाद कर सके। आई ऑफर मिलियंस ऑफ ओबीसेंसेस अंडर द लोटस फीट ऑफ वृंदावन दास ठाकुर। नो वन एल्स कुड राइट सच अ वंडरफुल बुक फॉर द डिलीवरेंस ऑफ द फॉलन सोल्स। तो कृष्णदास काविराज जी कहते हैं मैं लाखों बार प्रणाम करता हूं किसके चरणों में, किसके चरणों में, मैं लाखों बार प्रणाम करता हूं वृंदावन दास ठाकुर के चरणों में। और इतने अच्छी इतना अच्छा ग्रंथ कोई नहीं लिख सकता। ये ग्रंथ है किस लिए, पतितों का उद्धार करने के लिए। तो हम भक्तों को वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करना चाहिए क्या कि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो जिसके माध्यम से हम भक्ति में आगे बढ़ सके। नारायणी eternally eats the remnants of the food of Chaitanya Mahaprabhu. Shri Vrindavan Das Thakur was born of her womb. So Narayani jo thi, Srivas Pandit ke bhatiji thi. Srivas Pandit ke teen bhai the. Srivas Angan mein Chaitanya Mahaprabhu ne kirtan shuru kiya tha. Srivas Angan hamare iskon Mayapur mandir ke pados mein hai. So Narayani jab char Srivas Pandit ki bhatiji thi और जब वो 4 साल की थी उसे चैतन्य महाप्रभु जी की असीम कृपा प्राप्त हुई थी। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना खाया हुआ प्रसाद छोड़ा नारायणी के लिए और नारायणी को कहा चैंट हरे कृष्णा। तो नारायणी ने हरे कृष्णा मंत्र का इतने भक्ति भाव से उच्चारण किया फिर बाद में जाकर भगवान प्रकट हुए नारायणी के घर में। तो नारायणी कौन है, श्रीवास पंडित की भतीजी है और जो वो 4 साल की थी उसे चैतन्य महाप्रभु जी की असीम कृपा प्राप्त हुई थी। What a wonderful description he has given of the pastimes of Lord Chaitanya. Anyone in three worlds who hears it will get purified. तो कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की अनेक लीलाओं का इतने सुंदर रूप से वर्णन किया है कि जो भी सुनेगा चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाओं के विषय में उसके हृदय में क्या प्राप्त होगा, भगवत प्रेम प्राप्त होगा। दूसरे शब्द में हमें ध्यान पूर्वक चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाओं को सुनना चाहिए। आई फ्रीक्वेंटली अपील टू एवरीवन to adopt the method of devotional service given by Lord Chaitanya and Lord Nityananda and then be freed from the miseries of material existence and ultimately achieve the loving service of the Lord. So, Krishnadas Kaviraj ji kehte hain ki main sab bhaktan se vinti kar raha hoon ki jo siksha Chaitanya Mahaprabhu Nityananda ji ne di hai usko svikar karo aur usko svikar karoge तो जो 7 प्रकार के क्लेश हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। 7 प्रकार के क्लेश क्या है, आदिदेविक आधिपतिक आध्यात्मिक। अगर आप ये 7 प्रकार के क्लेशों से बचना चाहते हो तो वृंदावन दास ठाकुर क्या कहते हैं, कृष्णदास काविराज जी क्या कहते हैं, आप चैतन्य भागवत को सुनो, ध्यान से सुनो किसे, चैतन्य भागवत को। Shri Vrindavan Das Thakur has written Shri Chaitanya Mangal and therein described in all respects the pastime of Chaitanya Mahaprabhu. So, फिर से कह रहे हैं कि Vrindavan Das Thakur ने Chaitanya Mangal की रचना की जिसमें उन्होंने Chaitanya Mahaprabhu जी के अनेक लीलाओं का वर्णन किया. He first summarized all the pastimes of the Lord and later described them vividly in detail. The pastimes of Lord Chaitanya are unlimited and unfathomable. Therefore, in describing all those pastimes, the books become voluminous. So, Krishna Kavya ji keh rahe hain ki Chaitanya Mahaprabhu ji ke anek leelaon ka varnan Chaitanya Bhagavat mein kiya gaya hai aur shuruaat mein sankship roop mein aage gehrai mein. जैसे श्रीमद् भागवत में आप देखते हो पहले दो स्कंदों में संक्षेप रूप में भागवत का संदेश मिलता है. प्रभुपाद जी ने एक समय मुझे कहा था कि पूरा भागवतम का संदेश आप पहले दो स्कंदों में प्राप्त कर सकते हो, फिर आगे जाकर ज्यादा गहराई में भगवान के अवतारों का वर्णन इत्यादि. तो इसी प्रकार चैतन्य भागवत और चैतन्य चतुर्मिता में शुरुआत में समरी डिस्क्रिप्शन, शुरुआत में संक्षेप रूप में प्राप्त होता है ज्ञान, फिर आगे जाकर वही लीला और डिटेल गहराई के साथ आप पढ़ सकते हो. तो और आगे लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु की लीला इतनी गहरी हैं कि जब भी वृंदावन दास ठाकुर ने संक्षेप रूप में ही प्रस्तुत किया. तो आज वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव तिथि है. हम भक्तों को वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उनसे भीख मांगनी चाहिए क्या कि हमें उनकी भक्ति कृपा प्राप्त हो कि हम तन मन धन से चैतन्य महाप्रभु जी की सेवा में जुड़े, जो कि अवतार है और जो कि प्रकट हुए थे किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए. वृंदावन दास ठाकुर की गौर प्रेमानंद. हरे कृष्णा. कोई प्रश्न है? Yeah. Any questions? No questions? किसी ने चैतन्य भागवत पढ़ा है बंगाली में? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अनुवाद. Okay. हरे कृष्णा. No questions? प्रश्न पूछना चाहिए आप लोगों को. प्रश्न पूछना होशियारी की निशानी है और नहीं पूछना किसकी निशानी है? आलसी बनकर. हरे कृष्णा.
Okay.